आपकी खिदमत में भी आदर उस वक्त भी नहीं हो सका ना बाद में।
आपने
कबूल करे और आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में बरकत दे।
लोगों ने अब बीमारी नहीं हुए।
अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने बड़ी करम मेहरबानी फरमाई, एक नई जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह आपको जिंदा सलामत रखे, आपके फयूज से हम लोगों को फायदा हो, हमें सबको। और
तो आ गए। वैसे भी आपको
दो पटेल के छोटे भाई
दर्जात बंद करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। हमारी तरफ से उनको जदाए खैर दे, आपको भी अब बता उनके नक्शे कदम पे चलना सोफी। मैं तो यही समझा कि मौलाना आ गए, माशाल्लाह काफ़ी
मुशाबहत। मैं बहुत खुश हुआ आपसे,
काफ़ी मुशाबहत है माशाल्लाह। इधर है, अच्छा ये कैसे इसकी जहाँ रहना चाहिए वो फिर मैं बात नहीं कर सकूँगी। आप इधर से आ मेरठ से तो बड़ी बुज़ुर्गों की नस्बत से यादें दिलने रहती हैं। मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी रहमतुल्लाह ने मुझे पत्नी बहुत ज़्यादा अकीदत था उनसे, ज़्यारत भी वहाँ हुई थी उनकी दूर से ये मस्जिद नबी शरीफ में। वो आपको देख के ना एक बात याद आ गई है, मैं समझता हूँ खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने साक्षी उनकी खिदमत में ख़त लिखते थे और हजरत तो हर ख़त में कोई ना कोई नसीहत उनको फरमाते थे। तो अक्सर ख़त जो मैंने पढ़े उनमें से तीन बातें इन पर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से ज़ोर दिया, फरमाया कि ये इस सिलसिले में रास्ता खुलेगा इस पर चलने से। सबसे पहली बात यह है कि शरीयत मुतहरा जो है इस्लामिया मुहम्मदिया अला साहिब सलाम उस पर ज़ाहिरन व बातिनन अमल किया जाए और एतकादन भी सही हो, आदमी एतकाद सही हो उसका जो मुताबिक है सुन्नत वल जमात के एतकाद के। हमारे मुल्क में अकाबिर उलमा देवबंद जो हैं उन सब का जो अकीदा है वो अकीदा है सुन्नत वल जमात है, मुख्तसर वहाँ से आप ले सकते हैं। हमारे हजरत जी का भी इदनी इंतसाब जो है उलमा देवबंद से है। दूसरी बात फरमाई कि जिस शेख से ये रास्ता मिला हो उसके साथ कदबी ताल्लुक होना चाहिए, जिसको इस्तेलाह में रबतुल कल्ब मा शेख कहते हैं। इसके लिए तीन चीज़ें हैं دن سے شیخ کے ساتھ تعلق ہر وقت قائم رہنا چاہیے. اگر کوئی ایک بھی اس میں سے ڈھیلی ہو جائے یا چھوٹ جائے تو فیض پوری طرح سے نہیں آتا. وہ تین کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اس شیخ کے ساتھ ایک عقیدت بھی ہے اور اعتماد بھی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے اس کی خدمت میں میں آیا تو میرے لیے راستہ کھولا اور اللہ نے ان کو میری ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, یہ میرے محسن ہیں. دوسری بات جو ہے ادب ان کا. ادب جو ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں ظاہری یہ کرنا یہ بھی ہوگا, لیکن اصل ادب کیا ہے کہ دل ان کے ساتھ بالکل جڑا ہوا موافقت رکھتا ہو اور جو حکم دیں اس کو بجا لائے, اپنی جذباتیت کو غالب نہ ہونے دے. اپنا جو تصور ادب کا ہے وہ نہیں. اور اس کے ساتھ تیسری بات اطاعت, تو یہ ادب بھی اطاعت ہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک ہیں. تو اگر یہ ہو جائیں اللہ کے فضل سے تو پھر اس شیخ کامل کا جو فیض ہے وہ دن میں آتا رہے گا, ایک ربط قائم ہو جائے گا اور دونوں طرف سے, ادھر سے اقتصاب فیض کے لیے ایک طرح کا انجذاب ہوگا, ادھر سے فیضان القا ہوگا, بلکہ ایک ایسا ہو جائے گا جس طرح ایک دائرہ بن جاتا ہے کہ ادھر سے کوئی چیز جا رہی ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے جا رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے. یہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس میں, یہ خلاصہ ہے اس طریق کا. اور ہاں آخری بات کہ ذکر علی الدوام, جو ذکر اللہ کا طریقہ ہمارے مشائخ سے چلا آتا ہے, ظاہر اس کا جو ہے اس کو آپ اشعار کی شکل کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک حقیقت ہے جس کو ذکر کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق ہی فرمایا گیا ہے کہ وہ آپ اس پر پہنچیں. اور اسی ذریعے سے چونکہ لوگ پہنچے ہیں مشائخ کی تربیت میں, تو ہمیں بھی یہ تلقین فرمایا کہ اگر پہلے وہ عادتاً ہے تو آہستہ آہستہ اس کی بھی برکت سے وہ ذکر بنتا جائے گا اور وہ جو اس کی روح ہے وہ عطا ہو جائے گی, اور اسی سے یہ سارا راستہ چلنا ہے. کامیابی کا راستہ یہی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے ایمانی, یہ تعلق اور ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانی معنوی اور یہ اس قسم کا ہے, روحانی بھی کہہ دیجیے تکلفن جی. ویسے جو بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ اس راستے پر استقامت عطا فرمائے. یہ ایک امانت تھی حضرت کی, میں نے کہا آپ تک بھی پہنچا دوں, پڑھتے تو رہتے ہیں ساتھی حضرت کے مکتوبات شریف بھی اور غور کم کرتے ہیں, غور کرنا چاہیے. یہ قرب اللہ تعالیٰ کا قرب رضا ہے اور یہ قرب ایمانی ہے. باقی جتنے ہمارے قرب کے تصورات ہیں وہ ان سے پاک ہیں, بلند اقربیت کا ہے, یہی احدیت کا ہے, پھر میت شیخ میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا عکس ہے, اس کو بھی اگر اس طرح سے سمجھا جائے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے آدمی. اور اگر میں ظاہری اس طرح سے چمٹا رہے تو فائدہ دیر سے شاید ہوگا یا کم ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس ادب کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ دل ملا ہوا ہو تو پھر یہ راستہ کھلتا ہے. اور زبانیں مختلف ہوتی ہیں, بعض دفعہ دوسری زبان نہیں آدمی سمجھتا, اور جہاں ایک جیسی زبان بولنے والے ہوں زیادہ انس ہو جاتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہم زبانی نہیں ہم دلی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ हम दिली अज हम जुबानी बेहतर अस्त। दिलों का मुआफ़कत होना जो है, जुबान को कोई नहीं, यहाँ जुबानों से काम नहीं चलता, खामोशी से चलता है। लेकिन हर दम वो और दो दम गाफिल, वो दम काफिर, यह हम मशहूर है। तो काफिर का मतलब है ना शुक्र में, ये वो अल्लाह का शुक्र जो है कि हम पेश कर सांस हम लेते हैं, जब अंदर फेंकते हैं अगर अल्लाह इसको अंदर ही रोक ले हम बाहर नहीं ला सकते, और जो बाहर छोड़ते हैं ये दोनों तो कहते हैं तो एक सांस पर जो आ जा रहा है दो शुक्र तो वाजिब हो गए, और बाकी उसकी नेमत नहीं। इन तो नेमत अल्लाह है फला तो सूहा, बंदे के बस की बात ही नहीं है बेचारे की, इसलिए तो उसके लिए आजी है और उसका ज़रिया कलबी वो अल्लाह की तरफ तवज्जो अल्लाह है, तौबा है, और ज़ाहिर में ये सलात में माथा ज़मीन पर रख देना है, ताकि जो दिल में है ज़ुबान से एक सुभान रब्बी अल आला कह रहा है, और उसकी जिस्म की हालत भी ऐसी है कि उसमें एक सजदे की सी कैफियत है। ये नमाज में मुकम्मल जिक्र इसलिए इसको कहा गया है। इसके अलावा किस्से कहानियाँ हैं और मुगालते हैं और अपने ऊपर झूठे जज्बात तारी करने वाली बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये न फीका है न मीठा है न ठंडा है न गर्म है, ये इन कैफियतों से एक मावरा कैफियत अगर उसका नाम रखा जाए तो वो कैफियत बेकैफ है, और वो कैफियत ईमानी विद्दानी रूहानी है, ये है इसका थोड़ा सा। समझ आएगा करने से, बात से नहीं, काम से करना पड़ेगा। अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, और उसकी तौफीक से उसकी मेहरबानी से ये हो सकता है। एक हदीस शरीफ की दुआ का इस तरह से है, अल्लाहुम्मा बिहम्दिका इंसरफ्तु वबिज़म्बी एतरफ्तु, ये आपकी शान है कि मुझे बर्दाश्त किया हुआ है और मैं चलता फिरता हूँ, और मुझे अपनी गुनाहों का अपनी खामियों का पूरा एतराफ़ है, लेकिन क़ुरबान जाएँ आपकी शान के वो हमद के लाके कि आपने मुझे बर्दाश्त किया हुआ, नेमतें दे रहे हैं, और अगर ये बड़ी नेमत जो है अपनी याद अपना ताल्लुक ये अनाज फरमा दें फिर क्या कहें। ये वो तसव्वुफ है जो हमें हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह से मिला, उन्हें यहाँ से मिला, ये जो अंदर आराम फरमा है। आप मदीना तैयबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इस मुल्क में तशरीफ लाए, एक दिन फरमाया कि आप हिंद चले जाएं, आप फरमाते हैं मेरी क्या मजाल की मैं पूछता मैं हिंद क्या करूँगा या कहाँ जाऊँ, चल पड़ा। और फिर मैं दिल्ली गया, अजमेर गया, फिर इन जंगलों में फिरता फिराता इस जंगल में आ गया, यहाँ पर तबीयत इस जगह से मानूस हो गई, रुक गया। मेरे विज्ञान में वो थोड़े दिन बनते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 40 बनते हैं, उससे कुछ कम बेश हो सकते हैं। वक्त आ गया, अल्लाह ने बुला दिया। इर्द गिर्द ये जंगल था, लोग निस्तरा छोटे छोटे कोई डेरे भाग क्या उनको कहते हैं वो होते हैं, कोई लोगों ने दरवेश सूरत समझ के एक मोहब्बत का इजहार किया था और इसी तरह उन्होंने इस मैदान में दफन कर दिया, वही जगह जो पसंद थी। कब्र के निशान को चर्चे के बाद तो फिर ना रहा। फिर 400 साल के बाद अल्लाह ने ये चश्मा जारी फरमाया। मौलाना अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह वो जो उधर साथ हुए उनके ज़रिए जल्द ही हमारे हजरत खिदमत में आ गए। फिर आपने बराए रास्त हजरत को अपने तरबियत में दे दिया। वास्ता मौलाना अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ज़ाहिर में, लेकिन फैज़ जो है तवज्जो तरबियत फैज़ वो हजरत सुल्तान लाजमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। हमारे हजरत फरमाते हैं कि मुझे मखलूक में सिर्फ दो हस्तियों ने फैज़ान की तवज्जो फरमाई। एक मेरे शेख हजरत अलाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देख लीजिए कि आप किस सिलसिले से मिले हैं और कितनी बड़ी सआदत है ये नस्बत। और जिसको बराए नाम का मतलब तो हमारे यहाँ उर्दू में ना होने के देते हैं, लेकिन नाम भी काम करता है और ये नाम की भी नस्बत जो है ये भी फिर आगे यही रास्ता खोलती है। अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों को अपने नामों से अपने करीब किया। वो नाम उलमा के नाम फरमाते हैं कि वो अस्मा जिनको कहते हैं अस्मा वो सिफात के बारी ताला है और उन्हीं के फैजान से ये कायनात में रंगा रंगी है। भी क्या कहें,
सालों से इंतजार था वो आ गया।
कोई आदमी इधर नहीं आया, इधर कैसे आता, जाहिर में भी कोई आबादी नहीं थी और आने का मतलब ये है कि उसकी बदबू तक रसाई होती फिर आता। ऊपर ऊपर से आना जाना क्या है, वो दूसरी दुनिया ये दूसरी। एक लिहाज से बहुत बड़ा फासला और दूसरे लिहाज से अल्लाह ने जो अजाब हटा है फिर ऐसे ही जैसे आप सामने बैठे इससे भी करिए। ये हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह कमाल है कि 13 सदियों का फासला चीर के हमें उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके कदमों में रख दिया। रास्ता मुख्तसर हो गया, मकसूद हासिल हो गया। रास्ता यही है और कोई नहीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही अल्लाह के हाँ मिलेगा। इसके अलावा कोई समझे तो गलतफहमी में है, मुगालते में है, नहीं मिलेगा।